पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित।
पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार इस वक्त आप सुन रहे हैं अर्पा रेडियो पर। आइए सुनते हैं हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत विषय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह प्रजापति का व्याख्यान।
आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें।
प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम वाक्य और वाक्यगत अशुद्धियां इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करने के पहले हम वाक्य क्या है, स्वरूप और उसकी परिभाषा जान लेते हैं। मनुष्य के विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्य से संभव हो पाती है। संस्कृत विद्वान भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ वाक्यपदी के ब्रह्मकांड 73वें वाक्य की परिभाषा दी है। वे लिखते हैं, संस्कृत विद्वान भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ वाक्यपदीय के ब्रह्मकांड 73वें में वाक्य के महत्वपूर्ण सत्ता को स्वीकारा है। वे लिखते हैं, पदेन वर्णा वंदते वर्णेश्च वणे वेता न च वाक्यात् पदानात्यंतम् प्रतिवेविको न कश्चन। अर्थात जिस तरह वर्णों के अवयव नहीं होते, उसी तरह पदों में वर्ण या वाक्य में पद नहीं होते। इस तरह उन्होंने वाक्य को ही भाषा की वास्तविक इकाई माना है। पूर्ण अर्थबोध ही वाक्य की वास्तविक शक्ति है। खंडित रूप में वाक्य की अर्थपूर्णता संभव नहीं। मान लीजिए कोई वाक्य है, तुम बाजार कब जाओगे। इस वाक्य को कोई खंड खंड कर कहे, तुम रुक जाए, फिर बोले बाजार, फिर रुक जाए, फिर बोले कब, फिर रुक थोड़ा समय बाद बोले जाओगे, तो इस तरह रुक रुक कर शब्दों के उच्चारण मात्र से पूर्ण अर्थ की प्राप्ति हमें नहीं होगी। तात्पर्य कि हम उस वाक्य को अर्थ के रूप में सही सही समझ नहीं सकते, या इसको इस प्रकार कहें, उस पूरे वाक्य की पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति हमें नहीं प्राप्त होगी। लेकिन कोई किसी से कहे कि तुम बाजार कब जाओगे, तो यह जिसके समक्ष यह प्रश्न किया जा रहा है, वह ये इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे सकता है। तात्पर्य कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका भाव पूर्ण वाक्य से संप्रेषित तभी हो पाएगा जब वह सार्थक रूप से उच्चरित किया जाए, या सार्थक रूप से कहा जाए, या सार्थक रूप से लिखा जाए। शब्दों को रुक रुक कर बोलने से पूर्ण अर्थ संप्रेषित नहीं हो पाता। लेकिन कुछ शब्द वार्तालाप में पूर्ण अर्थ भी देते हैं, तो वे वाक्य कहलाते हैं। यह प्रश्न भी विचारणीय है। देखिए, जैसे दो व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें पहला बोलता है आप अभी क्या खाएंगे, दूसरा क्या बोलता है रोटी, और आप वो प्रश्न पूछ रहा है। दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, रोटी, और आप, इसका मतलब है कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से पूछ भी रहा कि आप क्या खाएंगे। पहला क्या बोलता है, चावल, दूसरा क्या रोटी से काम चल जाएगा, पहला हाँ, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है धन्यवाद। यदि ये पहला जो बोल रहा है चावल, यह केवल एक शब्द है, लेकिन इसका वाक्य का अर्थ क्या दे रहा है, यह कि मैं चावल खाऊंगा। इसी तरह जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है क्या रोटी से काम चल जाएगा, तो पहला बोल रहा है हाँ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह बोल रहा है कि रोटी से काम चल जाएगा। यहाँ रोटी, चावल, हाँ एक शब्द के वाक्य कहे जा सकते, क्योंकि यह शब्द पूर्ण अर्थ बोध करा रहे हैं। जैसे कि वार्तालाप में प्रयुक्त रोटी के लिए पूर्ण वाक्य होगा हाँ मैं रोटी खाऊंगा, और चावल के लिए मैं चावल खाऊंगा। इसलिए यदि वार्तालाप कुछ देर के लिए रोक कर के पुनः रोटी चावल हाँ कहा जाए तो केवल शब्द के अर्थ स्पष्ट होंगे, वाक्य और वाक्य का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसका कारण यह है कि प्रसंग, उद्देश्य व विधेय के बारे में पता नहीं, जबकि आप अभी क्या खाएंगे में पूर्ण वाक्य संप्रेषित हो रहा है। इसलिए वाक्य वे हैं जो पूर्ण अर्थ बोध कराएं। इसलिए मैंने जब ऊपर कहा कि विभिन्न पदों के संयुक्त को वाक्य बोलते हैं, और इसी तरह कहा कि वार्तालाप के दौरान कोई शब्द, कई शब्द भी पूर्ण वाक्य का अर्थ दे रहे हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, वाक्य से तात्पर्य है कि वो पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराए। इसलिए विभिन्न भाषाओं में अपनी अपनी वाक्य संरचना होती है, जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म अपने व्यवस्थित स्थान पर प्रयुक्त होकर अर्थबोध कराते हैं। विद्वानों ने वाक्य की अनेक परिभाषाएं दी हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग वाक्य की परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसी तरह भोलानाथ तिवारी कहते हैं, वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है जिसमें एक या अधिक शब्द होते हैं तथा जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो या अपूर्ण, व्याकरण की दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होते हैं, होती है। साथ ही उसमें प्रत्येक या परोक्ष रूप से कम एक समापिका क्रिया अवश्य होती है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वह पद समूह जो पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता हो वाक्य कहलाता है। प्रिय शिक्षार्थियों, वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य से तात्पर्य जिसके लिए कुछ कहा जाए, जैसे गीता खाना खाली में गीता उद्देश्य है। इसी तरह गीता का, सीता का, उसे, उसका, तुम, आप इत्यादि उद्देश्य हैं। सामान्य वाक्य में कर्ता उद्देश्य होता है। इसी तरह वाक्य का वह अंश, वह अंश जो उद्देश्य के बारे में बताए या सूचना दे, वह विधेय कहलाता है। जैसे तुमने खाना खा लिया में खाना खा लिया विधेय है। इसी तरह गीता दौड़ी, सीता ने चिट्ठी लिखी में दौड़ी और चिट्ठी लिखे विधेय हैं। विधेय में क्रिया और उसका विस्तार शामिल है। प्रिय शिक्षार्थियों, हमें वाक्य और पदबंध के विषय में भी चर्चा कर लेनी चाहिए। विद्वानों ने वाक्य, पद और पदबंध को लेकर अलग अलग मत व्यक्त किए। भर्तृहरि ने वाक्य की स्वतंत्र सत्ता स्वीकारी है, वहीं कात्यायन ने पद को भाषा की इकाई माना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पद के संबंध में स्पष्ट किया है कि शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बना लेने पर उसे पद की संज्ञा दे दी जाती है। अन्य विद्वान हरदेव बाहरी पदबंध के संबंध में लिखते हैं, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। इन विद्वानों द्वारा कहे गए वाक्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं जो अर्थ तो देते हैं परंतु पूर्ण अर्थ नहीं। तात्पर्य यह कि वाक्यांश पदों का समूह तो होता है लेकिन पूर्ण या स्पष्ट अर्थ नहीं होता, जबकि वाक् पदों का समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है। इसलिए पदबंध लोकोक्तियां या कहावतें हो सकती हैं, लेकिन आम के आम गुठलियों के दाम वाक्यांश है, लेकिन किस प्रसंग में कहा जा रहा है यह स्पष्ट नहीं, इसलिए वाक् पूर्ण नहीं माना जा सकता। लेकिन यह कहा जाए कि अरे नरेश, तुम तो रुद्राक्ष में बेर की गुठलियां मिलाकर बेच दी, वाह भाई आम के आम गुठलियों में दाम, तो यह पूर्ण वाक् हो गया। शिक्षार्थियों, वाक् निर्माण संबंधी कुछ बातें प्रमुखता से ध्यान देनी चाहिए, जैसे शब्द की सार्थकता क्या है, योग्यता क्या है, आकांक्षा, क्रम संबद्धता। इसको अनुक्रम में इस प्रकार हम समझ सकते हैं। शब्द सार्थकता, जैसे वाक में प्रयुक्त शब्द सार्थक हों, निरर्थक शब्दों से वाक निर्माण नहीं किया जा सकता। जैसे हाथ धोकर भोजन करना चाहिए, यह वाक है, यह एक वाक है। इस वाक्य में यदि भोजन को भाजन बोला या लिखा जाए तो वाक्य का अर्थ गलत हो जाएगा। योग्यता, योग्यता का मतलब है वाक्य विन्यास में अर्थबोध कराने की क्षमता का होना। वाक्य विन्यास में अर्थबोध कराने की क्षमता होगी तभी वाक्य सही अर्थ प्रतीति करा सकता है। जैसे वह पत्थर से तेल निकालता है, मैं व्याकरण की दृष्टि से वाक्य सही है, लेकिन उसमें अर्थबोध कराने की योग्यता या क्षमता नहीं है। कारण, पत्थर से तेल नहीं निकलता, यह आप जानते हैं। यह एक व्यंग्यात्मक या मुहावरा रूप में भले कहा जा सकता है कि तुम तो ऐसा काम कर रहे हो जैसे पत्थर से तेल निकालना। इसका मतलब यह है कि इस वाक्य में समान रूप से अर्थबोध कराने की योग्यता नहीं है। वहीं यदि पत्थर के स्थान पर तिल, सरसों या तिलहन शब्दों का प्रयोग करें तो वाक वह तिल से तेल निकालता है बोला जाए तो यह पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है। इस वाक्य में अर्थबोध कराने की योग्यता है। तीसरा, आकांक्षा। वाक्य में इतने शक्ति होनी चाहिए कि कोई श्रोता, पाठक किसी शब्द को पढ़कर या सुनकर वाक्य का अर्थ जानने को उत्सुक हो जाए। यह तभी संभव है जब श्रोता, पाठक को पूर्ण अर्थ समझ में आए। जैसे आप अभी क्या खाएंगे वाक्य हमने प्रयोग किया, यह सुनकर श्रोता हाँ या नहीं में उत्तर दे सकता है, लेकिन इसी को हम तोड़ कर बोले आप अभी क्या खाएंगे तो श्रोता को सुनने में अटपटा लगेगा और उसकी आकांक्षा, जिज्ञासा कम हो जाएगी उस वक्ता के प्रति, उसका जो सहज भाव है वो नहीं रह जाएगा। इसी तरह पदक्रम संबद्धता को ध्यान रखना चाहिए। जो शब्द जहाँ प्रयुक्त किया जाना है उस शब्द का प्रयोग क्रम, समय और अंतराल निश्चित होता है। हमने पिछले व्याख्यानों में इस संबंध में विस्तार से चर्चा की है कि शब्दों के प्रयोग का समय और अंतराल निश्चित होता है, अन्यथा शब्दों का अर्थ तो प्राप्त किया जा सकता है लेकिन वाक का पूर्ण अर्थ प्राप्त करना असंभव सा हो जाता है। जैसे सलाह दिया मैंने पढ़ने की, अच्छी उसे, इसका अनुक्रम सही नहीं है। अगर इसी वाक को जो मैंने कहा कि सलाह दिया मैंने पढ़ने की अच्छी उसे, इसी वाक्य को सुव्यवस्थित और अनुक्रम में कहा जाए मैंने उसे पढ़ने की अच्छी सलाह दी, यह वाक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति कराता है। अगला है अन्वय या अन्विति। अन्वय से तात्पर्य है लिंग, वचन, के प्रभाव व संबंध के अनुसार वाक्य निर्माण करना। जैसे मोहन खेत गई है, इसमें क्रिया के लिंग और वचन का कर्ता के लिंग से संगति नहीं बैठ रही है। मोहन खेत गई है, मोहन पुल्लिंग है और खेत गई है जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग है पर लागू हो रही है, तो इसकी संगति नहीं बैठ रही है। इस वाक्य को यदि इस रूप में कहें मोहन खेत गया है तो यही वाक्य सही हो गया, सही कहा जाएगा, शुद्ध कहा जाएगा, पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा है। कारण हिंदी में क्रिया या लिंग और वचन कर्ता के लिंग व वचन से प्रभावित होता है और उसी के अनुरूप प्रयुक्त किया जाता है। शिक्षार्थियों, वाक्य के कई प्रकार होते हैं। सामान्यतः वाक्य जिन प्रकारों का उल्लेख किया जाता है उसमें साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और अपूर्ण वाक्य की चर्चा की जाती है। साधारण वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, ये साधारण या सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे आज बारिश हुई, तुमने खाना खाया, तुम कहाँ जा रहे हो, इत्यादि। मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य अतिरिक्त कोई अन्य भी उसके अधीन वाक्यांश जुड़ा हो, जैसे आप चाहते हैं कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाऊं, या आप चाहते हैं कि मैं रायपुर जाऊं, या आप चाहते हैं कि मैं सुबह उठूं, या आप चाहते हैं कि मैं सुबह उठकर पढ़ूं, ये मिश्र वाक्य हैं। इसी तरह संयुक्त वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें कोई अन्य वाक्यांश आश्रित ना हो, जैसे बारिश हुई और बाढ़ आ गई। इसका तात्पर्य संयुक्त वाक्य में मूल वाक्य में ही सहायक अर्थबोध करने वाला वाक्य जुड़ा होता है। जैसे टेबल पर चाय रखी और गिर गई। अगला है अपूर्ण वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें कोई पद का लोप हो, जैसे मोहन क्या तुम नदी पार कर पाओगे, पवन नहीं। इस वाक्य में केवल नहीं अपूर्ण वाक्य है, मैं नदी पार नहीं कर पाऊंगा यह पूर्ण वाक्य है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने उल्लेख किया, वार्तालाप के दौरान ये अपूर्ण वाक्य भी पूर्ण वाक्य पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, वाक्यगत अशुद्धियाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कारण वाक्य संरचना व्याकरण के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। कर्ता क्रिया कर्म सुनिश्चित स्थान पर हो, तभी वाक्यगत अशुद्धियों से बचा जा सकता है। अशुद्धियाँ वर्तनी, लेखन, उच्चारण या व्याकरण नियमों का पालन न कर पाने के कारण होता है। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य, लड़का बहुत तेज दौड़ती है, लिंगगत अशुद्धियाँ। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका, लड़का बहुत तेज दौड़ता है। इसी तरह अशुद्ध वाक्य का और है, मैंने उसे घने जंगल में अनेक पशु पक्षी उड़ते व चरते हुए देखे। यहाँ पे देखिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैंने उस घने जंगल में अनेक पशु और पक्षी चरते व उड़ते देखे। इसी तरह अशुद्ध वाक्य का और लें, गोपाल जो मेरा मित्र है ने मुझे यह कलम दी है। अगर इसको शुद्ध वाक्य क्या होगा, मेरे मित्र गोपाल ने मुझे यह कलम दी है। प्रिय शिक्षार्थियों, ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं जो वाक्यगत अशुद्धियाँ दर्शाते हैं। जैसे मैं चार भाई हूँ, शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका, हम चार भाई हैं। इसी तरह श्याम के अंदर कई दोष हैं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, श्याम में कई दोष हैं। इसी तरह चार बजा है, शुद्ध क्या होगा इसका, चार बजे हैं। इसी तरह जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसका शुद्ध क्या, जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसी तरह गाय के एक पूंछ होती है, देखिए परसर्ग है, परसर्ग अशुद्ध कैसा प्रयोग हुआ है, इसका शुद्ध क्या होगा, गाय की एक पूंछ होती है, इसका शुद्ध क्या होगा, गाय की एक पूंछ होती है। इसी तरह अन्य उदाहरण ले सकते हैं, साहित्य और जीवन में घोर संबंध है, अशुद्ध, शुद्ध क्या होगा, साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। इस शब्द का प्रयोग घोर और घनिष्ठ, अशुद्ध है। अगर इसको यह कह सकते थे कि उसकी घोर निंदा की तो वह शुद्ध था, लेकिन जब साहित्य और जीवन के संबंध में घोर का प्रयोग करेंगे तो वह अशुद्ध हो गया, वहाँ पे घनिष्ठ ही आएगा। इसी तरह जगह जगह तिरंगा फहरा रहा था, ये अशुद्ध वाक का शुद्ध वाक देखिए, जगह जगह तिरंगा फहराया जा रहा था। इसी तरह मैं अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा रखता हूँ, अशुद्ध, इसका शुद्ध वाक क्या होगा, मैं अपने गुरु पर श्रद्धा रखता हूँ। इसी तरह धर्मशास्त्रों के अंदर बहुत से तत्व भरे पड़े हैं, इसका शुद्ध क्या होगा, धर्मशास्त्रों में बहुत से तत्व भरे पड़े हैं। इसी तरह शायद वे जरूर आएंगे, इसका शुद्ध देखिए, वे जरूर आएंगे या शायद वे आएंगे। इसी तरह महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी, इसको शुद्ध रूप में क्या बोलेंगे, महादेवी विदुषी महिला थी। इसी तरह परसर्ग का गलत प्रयोग के कारण जो वाक्यगत अशुद्धियां आती हैं उसमें देखिए, मेरे को नहीं पता, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे नहीं पता। इस तरह शिक्षार्थियों हम देखें वाक्यगत अशुद्धियां व्याकरणिक संरचना और शब्दों के सही प्रयोग न कर पाने के कारण होती हैं। हमें जब भी वाक्य प्रयोग करने होते हैं उस वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम शब्द के सही उत्तर और वाक्य की संरचना का पूर्णतः पालन करें, तभी हम वाक्यगत अशुद्धियों से बच सकते हैं।
नवीन युग का विश्वविद्यालय मूलाधार रखेगा, जनगण मन में जनहित का अवसर चाव भरेगा, गरल सुधा में परिणत होवे यह विनती है नियंता, कलुष निवारण सुयश संस्कृति रचे नए अभि